الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، پچھلے چند دنوں سے اصلاح نفس پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اصلاح نفس کے حوالے سے اپنے مشائخ کا یہ قول نقل کیا کہ مشائخ نے فرمایا، من عرف نفسه عرف ربه، کہ جس نے اپنے باطنی امراض کو پہچان لیا اس نے اللہ رب العزت کو پہچان لیا۔ باطنی امراض میں سے تین باطنی امراض پہ گفتگو پچھلے چند دنوں سے ہم کر رہے ہیں، اور باطنی امراض میں سے دنیا کی محبت والے مرض پہ گفتگو ہم نے سب سے پہلے کی، اس کے بعد ہم نے تکبر پہ گفتگو کی، اور پچھلی چند مجالس سے ہم تیسرے باطنی مرض پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ ہے غصہ۔ اور غصے کے حوالے سے ہم نے یہ بات عرض کی کہ لوگ غصے کو اتنا بڑا گناہ سمجھتے نہیں ہیں، اور اپنے دیگر گناہ تو بہت چھپاتے ہیں مگر غصے والے گناہ کو اتنا چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی کو پتہ چل بھی جائے تو کیا ہو۔ اس کے مقابلے میں شہوت سے متعلق گناہ اگر کوئی ہو جائے تو اسے ہم بہت چھپاتے ہیں۔ تو پچھلی مجالس میں سے ایک مجلس میں ہم نے تین دلائل دیے کہ کیوں غصہ جو ہے وہ شہوت سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پچھلی مجلس اس بات پہ گفتگو کی کہ جس بندے کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، جس کو صبر نصیب ہو جاتا ہے، وہ در حقیقت اللہ والا بن جاتا ہے۔ اللہ والوں کی بڑی نشانی صبر ہی ہے، اس لیے خانقاہوں پر چار مختلف طریقوں سے اس غصے کا علاج کیا جاتا ہے، اور مشائخ یہ کوشش کرتے ہیں کہ سالکین میں صبر آ جائے، اور اس میں سے ایک طریقہ تو ذکر اذکار ہی ہے۔ یہ ذکر اذکار اور معمولات کی ترغیب دی جاتی ہے، یہ ذکر کرنے والے کے باطن کے امراض کی شفا ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذکر اللہ شفاء القلوب۔ تو ایک طریقہ اس سے والے باطنی مرض کو دور کرنے کے لیے اور تمام باطنی امراض کو دور کرنے کے لیے وہ ذکر ہے۔ دوسرا طریقہ جو مشائخ اختیار کرتے ہیں وہ نصیحت کا ہے، اور نصیحت جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ فذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ تم نصیحت کرو، نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ تیسرا طریقہ جو مشائخ نے اختیار کیا، سالک کے دلوں میں سے اس غصے کے باطنی مرض کو دور کرنے کا، اور صبر والی صفت لانے کا، وہ یہ کہ سالک کو مشائخ خدمت والے کام پہ لگا دیتے ہیں، اور خدمت والے کام کرنے سے انسان کو طبیعت کے اندر تنگی برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ خدمت میں انسان کو جھکنا بھی پڑتا ہے، खिदमत में इंसान को एक वक्त में ज्यादा काम कई मरतबा करना पड़ता है। खिदमत में बहुत सारी चीजें तबीयत के खिलाफ जाती हैं। जब इंसान हिम्मत करके खिदमत वाले रास्ते पे चल पड़ता है तो कई मरतबा इस रास्ते से जबरदस्त तरीके से इंसान में सब्र आ जाता है। गुस्से की आदत जो है वो निकल जाती है। आज की इस मजलिस में वो चौथा जरिया तذکرہ करना मकसूद कि जिसके जरिए से मशायख इस गुस्से का इलाज फरमाते हैं, सब्र की तरगीब देते हैं, और वो है डांट डपट करना। गुस्से का एक इलाज ये डांट डपट भी है। सालिक को ये कहा जाता है कि तू डांट डपट बर्दाश्त कर। किताबों में मशायख के आदाब में से एक अदब ये भी लिखा हुआ है कि ये डांट डपट बर्दाश्त करनी है, मगर लिखा हुआ थोड़ा से मुनफरिद अंदाज में है। चुनाच मशायख की कुतुब में लिखा हुआ है कि अगर सालिक को शेख जूते भी मारे चौराहे पे खड़े रख के, यानी आम जगह पे नहीं चौराहे पे खड़े रख के शेख अगर उसे जूते भी मारे तो सालिक का काम यह है कि वो जूता उठा के वापस दे या हजरत एक और मर्तबा हो जाए। तो पता चला कि आदाब यही सिखाए जाते हैं कि जी टांट टपट अगर हो तो उसको बर्दाश्त किया जाए, कि इस डांट डपट से भी इंसान के दिल में वसअत पैदा होती है, तंगी बर्दाश्त करने का मादा पैदा होता है, सब्र पैदा होता है। माल पैसे के आने को हम बड़ी नेमत समझते हैं, सब्र को हम इतनी बड़ी नेमत समझते नहीं है। नबी अलैहि सलातो वसलाम फरमाया तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं उसमें सबसे बड़ी नेमत सब्र है। मगर शाज व नादरी कोई रिश्ता ढूंढने वाला अपनी बेटी के लिए ये ढूंढता है कि जी मेरी बेटी के लिए कोई सब्र वाला बंदा मिल जाए। नेक लोग भी कई मरतबा यही कहते हैं कि जी माल पैसा ठीक होना चाहिए तो हम रिश्ता दे देंगे। तो क्योंकि माल पैसे का फायदा जाहिर की आंख देख लेती है तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये तो नेमत है, मगर सब्र का फायदा जाहिर की आंख तो नहीं देखती, इसलिए हम उसको बड़ी नेमत नहीं समझते। सब्र का फायदा इंसान को जिंदगी में ठोकरें खाने के बाद समझ में आता है कि सब्र नहीं होता इंसान के अंदर तो वो बड़े बड़े गुनाह भी करता है, बड़े बड़े झगड़े भी करता है, बड़ी बड़ी गलतियां भी करता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बस जिसके पास सब्र है उसी के पास सबसे बड़ी नेमत है। तो मशायख डांट डपट से भी काम लेते हैं। हजरत अकदस थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पर पूरे दिन की तरतीब बनती थी, नमाज के औकात तय होते थे, हजरत के बयान के औकात भी पूरे दिन में फिक्स टाइम पे होते थे, जिक्र अस्कार अपने फिक्स टाइम पे, खाना पीना अपने फिक्स टाइम पे, सोने का वक्त बिल्कुल फिक्स था, और टाइम की पाबंदी बहुत ज्यादा लागू होती, हत्ता के रात को जो सोने का वक्त है उस सोने के वक्त से ज्यादा देर कोई अगर जाग जाए तो हजरत की हिदायत ये थी कि उसके बिस्तर को उठा के खानकाह से बाहर फेंक दिया जाए। तो बहुत ही मेजर्ड किस्म का निजामुल औकात थे, स्केड्यूल था, ताकि जो खानकाह पे आए वो पूरी तरह से फायदा उठाकर ही जाए। इन इस निजाम औकात में एक पीरियड डांट डपट का भी था, जिसमें सालिकीन सारे हजरत की खिदमत में हाजिर होते जो इसलाह के लिए आते, पर हजरत एक एक करके उनको डांटते, और उसको डांट बस सहने की आदत पड़ती। और ये तरीका हजरत ने इख्तियार फरमाया सब्र बढ़ाने के लिए, दिल की वुसअत को बढ़ाने के लिए। एक मरतबा इसी तरह हजरत का डांट का पीरियड चल रहा था, वो पहले एक को डांटा, फिर दूसरे को डांटा, फिर तीसरे को डांटा। इस दौरान उस जमाने के एक बहुत बड़े आलिम दीन, बड़े मुफस्सिर कुरान, हजरत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह, वो उस मजलिस में तशरीफ ले आए। अब उनको ये एहसास नहीं हुआ कि ये डांट का पीरियड चल रहा है, वो ये समझ रहे थे कि हजरत किसी वजह से सबको डांट रहे हैं। तो वो भी आके बैठ गए बराबर में, तो उनके होते हुए एक दो मरतबा यूं डांट पड़ी। फिर एक शख्स को जो डांट पड़ी वो उन मौलाना साहब का जानने वाला था जिसको डांट पड़ रही थी। तो जब हजरत उसको डांटा और उसको कहा तू ऐसा है तू वैसा है, तो मौलाना साहब ने थोड़ी उसकी सिफारिश कर दी कि हजरत नहीं नहीं ये मेरे जानने वाले हैं, ये तो बहुत ही अच्छे आदमी है, नेक आदमी है, तो ऐसे वो नहीं है। तो हजरत ने कहा कि मौलाना आप खामोश हो जाएं वरना अगली डांट आपको पड़ जाएगी। तो मशाइख ने डांट टपट को भी की तरह इस्तेमाल किया इस्लाह के टूल की तरह। बस मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि ये टूल हर एक पे चलता नहीं है, ऐसा ना हो कि ये टूल आप वहां इस्तेमाल करें जहां ये टूल वापस आप पे पड़ जाए। तो इसलिए ये सालिकीन पे चलता है, और ये उस सालिक पे चलता है जो वाकई ही इस्लाह की तलब लेके शेख के पास हाजिर होता है। तो उसकी इस्लाह वैसे भी शेख के ऊपर लाजिब हो जाती है। तो मशाइख फिर हर तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हैं कि उसका बातिन संवर जा रहे हैं। तो इसलिए ये डांट डपट करना ये जो मशाइख करते हैं ये बहुत मेजर्ड होता है, ये किसी नफसानी ख्वाहिशात की वजह से नहीं होता बल्कि ये इस्लाह की गर्ज से होता है। तो इसलिए आम बंदा इसको इस्तेमाल ना करे, आम बंदा तो तरगीब ही इस्तेमाल करे, दूसरों को जिक्र अस्कार करने की तलकीन करे या नसीहत की बातें करे। और अगर बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर ये अदब और सबर लाना है तो कुछ खिदमत के कामों को जिम्मे लगाए, उससे भी इंसान का दिल जो है वो सबर की तरफ आता है। अल्लाह ताला हमें ये बड़ी नेमत नसीब फरमाए। व आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुआ कर लीजिए अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलात वस्सलाम अला सैयद अल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाह इन्ना नसअलुका इल्मा नाफिया अमलन मुतकबला वलिस قلبا محاصرا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.